नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सॉफ्ट बैंक समर्थित ई कॉमर्स कंपनी मीशो एकीकृत आधार पर जुलाई में मुनाफे में आ गई है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। मीशो के संस्थापक एवं सीईओ विदित आत्रे ने पीटीआई भाषा से कहा कि पिछले 12 महीने में कंपनी के ऑर्डर की संख्या 43% बढ़ी है और राजस्व में 54% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कंपनी अब मुनाफे में आ गई है। आत्रे ने कहा कि मीशो के मुनाफे में आने से वह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 महीने में 85% ऑर्डर मंच पर पहले भी खरीदारी कर चुके ग्राहकों से मिले, जो मंच के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाता है। आत्रे ने कहा कि मीशो भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया शॉपिंग ऐप बना हुआ है। पिछले 12 महीने में कंपनी ने 14 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान की हैं। कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने, इस्तेमाल किए गए या पुराने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने और मूल्य वर्धित उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू करने जैसे कदमों से भारत का चिकित्सकीय उपकरण उद्योग 2030 तक $50 अरब तक पहुंच सकता है। शोध संस्थान GTRI ने एक रिपोर्ट में ये बात कही। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए सरकार और उद्योग को 6 कार्य बिंदु सुझाए हैं। उसने सरकार से उन वस्तुओं के आयात पर भुगतान किए गए IGST के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने को भी कहा, जिन पर मूल सीमा शुल्क 0 है। रिपोर्ट में विदेशी प्रभाव का मुकाबला करने और भारत निर्मित उत्पादों के लिए स्थानीय स्तर पर सामग्रियां जुटाने पर जोर देने का सुझाव भी दिया। आतिथ्य क्षेत्र से जुड़ी कंपनी ओयो इस साल के अंत तक रामेश्वरम और रामनाथपुरम में 50 होटल और होमस्टे जोड़ने की योजना बना रही है। कंपनी ने सोमवार को ये घोषणा की। इस योजना का मकसद शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए रामेश्वरम को एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में पेश करना है। ज्यादातर होमस्टे रामनाथ स्वामी मंदिर के पास होंगे। होमस्टे में आगंतुक उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों के घरों में रहते हैं। ओयो के संस्थापक एवं सीईओ रितेश अग्रवाल ने कहा कि ओयो एक पर्यटन स्थल के रूप में रामेश्वरम के विकास में सहायक भूमिका निभाने के लिए उत्साहित है। उन्होंने कहा कि वे सरकारी अधिकारियों, स्थानीय हितधारकों और समुदाय के साथ मिलकर इस दिशा में काम करने को प्रतिबद्ध हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने मुंबई की ग्रीन हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लिंक परियोजना के लिए $1 अरब का वित्त जुटा लिया है। कंपनी ने सोमवार को ये जानकारी दी। इस 80 किलोमीटर की बहुआयामी परियोजना की मदद से मुंबई में नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ेगी। AESL ने एक बयान में कहा कि इस लिंक का निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 में शुरू होगा। बयान के मुताबिक AESL ने $1 अरब के ग्रीन HVDC लिंक परियोजना के लिए सफलतापूर्वक वित्त पोषण हासिल किया है। इसकी मदद से शहर की बढ़ती बिजली मांग को हरित ऊर्जा के जरिए पूरा किया जा सकेगा। HVDC पारेषण तकनीक अन्य पारंपरिक प्रौद्योगिकी से बेहतर है, क्योंकि ये बिजली वितरण नेटवर्क को स्थिर करती है। कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने, इस्तेमाल किए गए या पुराने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने और मूल्य वर्धित उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू करने जैसे कदमों से भारत का चिकित्सकीय उपकरण उद्योग 2030 तक $50 अरब तक पहुंच सकता है। शोध संस्थान GTRI ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात कही। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने विकास के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए सरकार और उद्योग को 6 कार्य बिंदु सुझाए। उसने सरकार से उन वस्तुओं के आयात पर भुगतान किए गए IGST के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने को भी कहा, जिन पर मूल सीमा शुल्क 0 है। यात्री वाहनों, दोपहिया और ट्रैक्टर सहित सभी खंडों में मजबूत मांग के चलते जुलाई में वाहनों की खुदरा बिक्री 10% बढ़ी। ऑटो डीलरों के निकाय फाडा ने सोमवार को ये जानकारी दी। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने वाहनों की कुल बिक्री बढ़कर 17,70,181 इकाई हो गई, जो जुलाई 2022 में 16,09,217 इकाई थी। जुलाई में यात्री वाहनों की बिक्री 4% बढ़कर 2,84,064 इकाई हो गई, जो एक साल पहले समान अवधि में 2,73,055 इकाई थी। फेडरेशन ऑफ मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने बताया कि इस महीने ऑर्डर में वृद्धि हुई है। पेटीएम ब्रांड के तहत सेवाएं देने वाली वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयर में सोमवार को शुरुआती कारोबार में 11% से अधिक का उछाल आया। कंपनी के संस्थापक एवं सीईओ विजय शेखर शर्मा ने एटफिन होल्डिंग BV से पेटीएम में 10.30% हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा के बाद शेयर में उछाल आया है। ये सौदा नकदी रहित होगा। BSE में कंपनी के शेयर का मूल्य 11.57% बढ़कर 887.55 रुपए पर पहुँच गया। एनएससी में शेयर का मूल्य 11.43% बढ़कर 887.70 रहा। सौदे के अनुसार शर्मा अपनी 100% स्वामित्व वाली विदेशी इकाई रेजिलियंट एसेट मैनेजमेंट बीवी के जरिए एटफिन से पेटीएम में 10.3% हिस्सेदारी खरीदेंगे। शर्मा को हस्तांतरित की जाने वाली हिस्सेदारी का आर्थिक अधिकार एटफिन के पास ही रहेगा। शेयर बाजार को दी जानकारी के अनुसार इस अधिग्रहण के लिए कोई नगद भुगतान नहीं किया जाएगा और न ही शर्मा द्वारा सीधे या अन्यथा कोई गिरवी गारंटी या अन्य मूल्य आश्वासन प्रदान किया जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।